اس ملک میں بولنے کی آزادی ہے یا جو اسمبلی اور سیاست کی آزادی ہے یہ وکلا کی طرف سے آئے، کسی سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی کمال نہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے جیسے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم پہلے سے سمجھیں، ہم سڑکوں پہ آنے کا ہم نے اعلان کر دیا ہے، صرف سڑکوں پہ ہم نے، اسٹریٹس پہ ہم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا ہے. 26 جنوری میں ہم ایکشن کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں، میں بھی جا رہا ہوں، دوسرے دوست بھی جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم بالکل وہاں سے سٹارٹ لیں گے، بالکل شرع دستور سے سٹارٹ لیں گے، اور سارے پاکستان میں ہم اپنی تحریک کو آگے لے جائیں گے. اور اس میں جتنا بھی وقت لگتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، کسی بھی لحاظ سے ریٹریٹ کرنے کا، واپس آنے کا، یا کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی حد تک، معمولی سے معمولی، ایون ان اے سلائٹسٹ مینر بھی کوئی کمپرومائز اپنے ویوز کے اوپر نہیں کریں گے.
بہت شکریہ سر. آپ نے دو تین سوالات اس سے جنم لیے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسا مسئلہ، آپ نے کہا کہ آپ 26 تاریخ کو یوم نجات پائے بنائیں گے فائز عیسیٰ سے، حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب کو پروموٹ کرنے کے لیے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا تھا کہ فائز عیسیٰ بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کی عدالت کی طرف جا رہے ہیں. فائز عیسیٰ تو میرا خیال ہے دو قدم نہیں چل کے جا سکتے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ 26 کو آپ یوم نجات منا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 25 سے پہلے ایک طرف ملک میں شنگائی کانفرنس ہو رہی تھی، اس پیچھے بیک آف دا سکرین یہ تھا کہ 25 سے پہلے یہ 26 آئینی ترامیم کسی طرح سے ہو جائیں. تو آپ کیسے یوم نجات منائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی نہ کوئی پوزیشن ملے گی اینڈ ہی ول بی ان چارج آف آل دا پروسیجر؟ نمبر ون. نمبر ٹو، آپ کے وکلا پرویز مشرف کے دور میں آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. آج جب میں عدالتوں کی طرف دیکھتی ہوں، وکلا کی طرف دیکھتی ہوں، یور بار ایسوسیشنز اینڈ بارز آر ویری بیڈلی ڈیوائڈیڈ، کہ بالکل گورے والی اسکیم چلائی کہ ایک ایک کو الگ کر کے توڑ کے رکھ دیا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کی یہ پروٹیسٹ اتنی سکسیسفل ہو جتنی کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی.
دیکھیے ظفر صاحب، ڈویژن ہے بالکل، مانتا ہوں، مگر اتنے امپورٹنٹ نہیں، اتنی اس کی اہمیت نہیں کہ ہماری تحریک یا ہماری جدوجہد پہ اس کا کوئی اثر پڑے. یہ ڈویژن بھی آسمان سے تو نہیں اتری. وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے دیکھا کہ اس ملک میں سب سے لٹرلی اور ایکچولی اگر کوئی پریشر گروپ ہے، پاورفل اسٹرانگر پریشر گروپ ہے، وہ وکلا کا پریشر گروپ ہے. لہذا اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی اور ہر لحاظ سے اس نے ہمارے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی. اس وقت ہمارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین، یہ جو گروپ لیڈ کر رہا ہے اس کو، وہ پرو کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے اپنے اصولوں پہ، اپنے موقف کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. مگر اس وقت میں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ان کی کوئی بھی اہمیت، اس وقت سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بہت بڑی چیز ہے، اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، یہ ہماری اسٹیچوٹری باڈی ہے، سارے وکلا کے میٹرز کو یہ لیگلی جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے سب کچھ. اگر ان کی اہمیت ہوتی، اگر ان کی سے میں کوئی آواز میں کوئی جان ہوتی، یا یہ اتنے انفلوئنشل ہوتے وکلا میں، وکلا کمیونٹی میں، کہ ہماری جدوجہد پہ ان کا کوئی اثر پڑ سکتا، تو اس وقت وہ جو ہمارے سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوتا، یا ہمارے وہ گروپ کا جو لیڈر ہے ایس این بون صاحب یا اعظم تارڑ صاحب، وہ بیٹھ کے. ایکچولی میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، کوئی لگی لگتی بات نہیں ہے. ہماری آواز کو وکلا بھی سننا چاہتے ہیں، ہماری آواز کو پبلک بھی سننا چاہتی ہے. ہمارے مقابلے میں وہ نکلے ایک جگہ، ہم نے تو ابھی ریسنٹلی ود ان اے پیریڈ آف اے ون منتھ، ناٹ ایون کمپلیٹلی ون منتھ، ہم نے لاہور میں بہت بڑا لائرز کنونشن کیا، پشاور میں بہت ہی بڑا کنونشن لائر کیا، اسلام آباد میں کیا، اور صرف 4 دن پہلے ہم کراچی میں کنونشن کر کے آئے. تو اس کا مطلب ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि कराची में जो लॉयर्स कन्वेंशन स्टार्टेड फ्रॉम 11:30 शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक सारी के सारी वुकला ऑडियंस बैठी हुई थी। एक आदमी, एक लड़का अपनी जगह से उठकर नहीं गया। शाम को 6:30 बजे के बाद जब वो सारा कन्वेंशन ऑफ हुआ, उसके बाद जो है वो लोग गए। तो इसका मतलब ये है कि लोग हमको सुनना चाहते हैं, लोग हमारी बात को यकीन करते हैं, लोग हमके हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। हम पे कोई, हामिद खान पे कोई दबाव आपको नजर नहीं आएगा, मुनीर के मलिक के ऊपर कोई आपको ब्लैक स्पॉट नजर नहीं आएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत मैं नहीं करता, मेरे उस पर कोई आपको ये नजर इल्जाम, मामूली सा मामूली गलत से गलत इल्जाम भी कोई माई का लाल नहीं लगा सकता कि मैं या मेरे पर्सनैलिटी पे या मेरे जदोजहद पे कभी भी मैंने कोई मामूली सी भी जो है स्पॉट आने दिया है। तो लोग या जो वकला है वो हमारे साथ है। तो इसमें जो आपने डिवीजन की बात की, मेरे ख्याल, मेरे नजदीक वो इमेटेरियल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और आप देखेंगे कि वकला जब भी हम सड़कों पे निकलेंगे, हमारी सबसे बड़ी जो सपोर्टर्स है, 2000 की जो मूवमेंट थी उसमें और आज भी, वो हमारी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, स्टूडेंट्स है। तो लिहाजा हम एज ए एक यूनिटी के साथ हम मूव ऑन करते हैं, और हमने पहली भी ये मूवमेंट चलाई है, वो बड़ी कामयाब रही। तो आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जो अब वकला की तहरीक चल निकलने वाली है, इनका इलीगल, अनलॉफुल और बिल्कुल बैड ऑन बेस्ड ऑन मेलिस और मेलाफिडे जो कैरीड आउट अमेंडमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, इन सबको हम ओवर थ्रो करके फेंकेंगे,
बहा के ले जाएंगे अपने रेले में। मगर अभी सर मैंने आपसे एक और क्वेश्चन किया था, 25th को फैजी साहब की रिटायरमेंट है, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं आई, जस्टिस मंसूर को ब्लॉक करने के लिए कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि जो हमारे पॉलिटिशियन है दे आर टेररिस्ट बिकॉज सहूलतकार के लिए अदर लफ्ज आप
सहूलतकार के तौर पर,
सहूलतकार को इस्तेमाल तो एज ए टेररिस्ट ही किया जाता है ना, इन्होंने भी सबोताज ही कर रहे हैं ना, हमारी आईन को सबोताज कर रहे हैं
ना।
जी अच्छा, मगर सर आपको क्या लगता है कि फैज ईसा साहब जो है उन्होंने भी बड़े दोगले दोगले बयान दिए हुए हैं कि हाँ अगर सबके लिए हुआ तो मेरी भी उम्र भी बढ़ जाएगी और मैं भी रह जाऊंगा, तो आपका क्या ख्याल है फैज ईसा साहब अभी रूल करेंगे कि आप लोग अब नहीं रुकने देंगे उनको, बहाल ले जाएंगे साहब?
देखिए, इल विल या बैड इंटेंशंस क्या होते, गवर्नमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जहां तक मुझे याद पड़ता है हम सारे वकीलों के नोटिस में है कि काजी फैज ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का जो नोटिफिकेशन था, एग्जैक्टली इफ आई एम रिमेम्बर, वो 84 डेज पहले वो नोटिफाई हो गया था। अब अंदाजा लगाए, आज इस वक्त मैं और आप बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज 21 अक्टूबर है, मगर उसके बावजूद 25 को रिटायर हो रहा है काजी फैजी साहब, अभी तक ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और अब
तरमीम कर ली ना, तो आपको अंडरलाइन समझ जाते, बैनू सतूर समझ जाना चाहिए।
तो मैं अब चूंकि अमेंडमेंट आ गई है, तो अब वो जो पार्लियामानी कमेटी है, खुदा का करना देखें कहां सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट के जजेस जो कानून और आईन के हवाले से उनका एक अपना एक इलम, एक नॉलेज होता है, एक इलम होता है, एक सारा केसेस करने, सुबह शाम केसेस करने से जो एक बहुत वेल बेस्ड एक्सपीरियंस होता है, उनकी अपॉइंटमेंट अब जो पार्लियामानी कमेटी है, जो जो एमएनए और सेनेटर्स होंगे ये करेंगे, और ये एमएनए और ये एमएनए सेनेटर्स वो हैं जो आज सुबह 5 बजे तक बैठ
पाल सब
उन्होंने जी सारा बिकाओ माल आज बैठ के
आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैं, क्योंकि टाइम थोड़े में हमने ज्यादा बात करनी है। मैं बड़ा, मुझे गम हुआ कि जो मजबूर लाचार है उसकी कोई सुनीद नहीं। इट्स वेरी स्ट्रेंज के सुप्रीम कोर्ट में भी खरीदारी मंडी लगी, رات دس بجے یہ مکمل ہوا. اس کے بعد رات دس بجے کے بعد قومی اسمبلی یعنی 25 تاریخ سے پہلے انہوں نے یہ ترامیم کو منظور کرنے کے لیے یعنی رات 11 بجے کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, اور آج پیر کو صبح کے وقت انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ترامیم الٹیمیٹلی ہو گئی. یعنی اس میں 23 ٹوٹل 65 ووٹس پڑے, جس میں سے 23 ووٹ پیپلز پارٹی کے, جو 23 ووٹ پیپلز پارٹی, 19 نون لیگ, 5 جے یو یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب, 4 بلوچستان عوامی پارٹی, 3 ایم پی ایم, 3 اے این پی, 2 بی این پی اور 4 آزاد سینیٹر, 1 ووٹ کافی. اب یہ 4 آزاد سینیٹر وہ ہیں جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا, اور 1 کافی کے سینیٹر کو لیا. اور فیصل واوڈا نے آج صبح اٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر دی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن گیا. اب میں یہاں پہ آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف آپ کسی ترمیم میں ہے کہ کوئی بھی دوسری طرف ووٹ ڈال سکتا ہے, جس میں بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ 4 پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور 1 مسلم لیگ خلاف کاف کا سینیٹر, جبکہ نواز شریف صاحب نے 1 ممبر کو ڈی سیٹ کرنے کا کہا ہے. سپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے مسلم لیگ نون کے 1 رکن کی نااہلی کے لیے کمیشن کو خط لکھا ہے, جس کے لیے جناب نواز شریف صاحب نے یہ لیٹر لکھا کہ وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اس ترمیم میں. تو مطلب اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟
اس ملک میں زبر صاحبہ یہ ہو رہا ہے کہ باقی آپ چھوڑیں کتنے ایم ایل اے کتنے سینیٹرز کو ڈائریکٹلی بلیک میل کیا گیا, ڈائریکٹلی تشدد اور انڈر پریشر رکھا گیا, ڈائریکٹلی گھروں پہ ریڈ کیے گئے, دروازے توڑے گئے, اور لوگوں کو اور خواتین اور بچوں کو ہراس کیا گیا, ہراساں کیا گیا کہ کسی نہ کسی لحاظ سے یہ امینڈمنٹ کا. باقی آپ چھوڑیں بی این پی کے دو جو پچھلے 5-6 دن سے دونوں سینیٹر نسیمہ اور دوسرا قاسم 5-6 دنوں سے جو ان کا اتا پتا کچھ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں ہے, اور اسی وجہ سے ان کے لیڈر سردار اختر جان دبئی سے آئے. آج ان کا لیڈر آیا, وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا, ملنا چاہتا تھا, مگر باقی تمام لوگ تو مین جو صاحب سینٹ ہال کے جو مین گیٹ ہے وہاں سے آئے. ان دو کو پچھلے پارکنگ کی طرف سے جو ایک چور دروازہ ہے وہاں سے ان کو لایا گیا, اور کسی بھی لحاظ سے سردار اختر مینگل کو ان سے بات کرنے نہیں دی. اگر اس طریقے سے اس طرح ایم این اے سینیٹرز کو لا کے انڈر تھمپ امپریشن پریشر میں رکھ کے کوئرشن کر کے دباؤ کر کے آپ نے یہ امینڈمنٹ کی, اس کو کون مانے گا اور کیوں مانے گا؟ اس لحاظ سے یہ جتنا بھی ہوا ہے اس کی کوئی لیگل اور قانونی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات مجھے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, انٹرنیشنل ہائیلی ریپیوٹیڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ سے زیادہ غریب اور افلاس زدہ لوگ ہیں. غریب کے تو گھر میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, جو افلاس زدہ لوگ ہیں, افلاس یہ ان کے گھر میں, یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور بڑے دھڑے سے کہتا ہوں کہ رات جب رات ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, رات کی تاریکی بہت دیر میں پہنچتی ہے, غریب کے گھر غربت کا اور افلاس کا اندھیرا پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو یہ حکومت اس کو شرم آنی چاہیے. امینڈمنٹ پہ تو انہوں نے 1 مہینہ لگایا, پتا نہیں کتنے کروڑوں اربوں روپے انہوں نے جو ہے لوگوں کو خریدنے میں خرچ کیا, مگر وہ جو 11 کروڑ لوگ ہیں ان کی فلاح بہبود کے لیے یا ان کے بچوں کے لوالے کے لیے روٹی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں. میں ایک بات اور ہمیشہ کہتا ہوں اور بہت ڈرنے سے کہتا ہوں اور بہت غصے سے اور جذباتی ماحول میں کہتا ہوں, تقریروں میں میں نے کہا میں ساری زندگی اس پنجاب کی خاتون کو نہیں بھول سکتا جس نے صرف غربت کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے, अपने दो छोटे खूबसूरत बच्चों को लेके नहर में उन्होंने कूद कर जो है अपने और अपने बच्चों की जान गंवाई। क्यों? ये कौन है? कोई इस मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गरीबों के हाल पे सोच सके। यही वो लोग हैं जो अशराफिया के तौर पे बड़े बड़े गाड़ियों में 25-25 और 7-20 लाख 20-20 करोड़ की गाड़ियों में हमारे सामने फिरते रहते हैं। मगर इसलिए से ये हुकूमत चोरों की हुकूमत है, लूटमार मुल्क में लूटमार जमी हुई है, मची हुई है, इसलिए से इनकी कोई हैसियत नहीं। और किसी कीमत में सारे, मैं ईमान से आपको कहता हूँ, ईमानदारी, सारे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वुकला की जब थ्योरी चलेगी इनको एक आदमी भी वकीलों से नहीं मिलेगा जो इनको कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस वक्त मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क की जड़ों को काटने के लिए सब कुछ हो रहा है। और अगर ये इस मुल्क में यही कुछ करते रहे तो मेरे ख्याल में फिर अल्लाह माफ करे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस लिहाज से इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, और जो भी इनके साथ खड़ा है उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। काजी फैज ईसा आपके सिर्फ इनकी वजह से, इनके साथ सिर्फ साइड लेने की वजह से, इनकी सहूलतकारी करने की वजह से आज वो काजी फैज ईसा इस शहर में एक आदमी उसको सलाम करने वाला या आगे बढ़कर उसके साथ शेक हैंड करने वाला नहीं है। जब सहूलतकार का ये हाल है तो बाकी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो ये अमेंडमेंट जो इन्होंने पास किए, मैं बैसे तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जिससे सारी जिंदगी यही पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अपना वक्त गुजारा है, मैं दावे से कहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की वजह से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बहुत हद तक मौलाना साहब की पार्टी भी अब पाकिस्तान की सियासत से जो है लोगों के दिलो दिमाग से ये निकल चुकी है। अब इनके लिए इस मुल्क की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है।
शुक्रिया जनाब। अक्सर मेंगर साहब बहुत नाराज थे, मैं आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम अगेन। मैं सर देख रही थी अभी आपकी गुफ्तगू से पता चला कि उनकी जो अक्सर मेंगर साहब की पार्टी है उनके दो अराकीन, पहले उनको गायब किया गया और फिर जब ये वोटिंग से पहले उनको पीछे के दरवाजे से लेके आया गया और जनाब अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात नहीं की और बड़े फखर से ये कहते हैं कि 65 वोट पड़े, 23 वोट पीपल्स पार्टी, 19 नून लीग, 5 JUIF, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 3 MQM, 3 ANP और 2 BNP। तो इसका मतलब है अख्तर मेंगल साहब ने तो इस हुकूमत को परख लिया था, ये जो PDM2 है सहूलतकारों की, तो उनकी पार्टी के 3 लोगों ने भी वोट डाल दिया
जी
अंडर प्रेशर।
मैं कहता हूं ना, ये वोट प्रोक्योर किए गए हैं ऐसे ढूंढान के निकाल के, तमाम वो पाकिस्तान की पुलिस हवालात में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके इस मुल्क के MNA से और सेनेटर से वोट लिया गया है। थर्ड डिग्री तो चले हवालात में बहुत कुछ हो सकता है, मगर इस वक्त भी यही हुआ है, इनसे सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगवाया गया है। मैं दावे से कहता हूं एक भी कोई MNA सेनेटर आकर ये नहीं कह सकता, अपने दिल पे हाथ रखी ये नहीं कह सकता कि ये सारी अमेंडमेंट्स को मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, या मुझे समझाया गया और उसके बाद मैंने इनके लिए अपने वोट कास्ट किए हैं।
आप ये कह सकते हैं कि आपके चाहे वो सेनेटर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, अपने जाती मफाद और अपनी सीट के तहफ्फुज के लिए वो मुल्क को बेचने के लिए तैयार हैं, इज दैट राइट?
बिल्कुल बिल्कुल है, एग्जैक्टली दे हैव डन इट लाइक दैट।
बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बड़ी तलख बातें भी हैं और सच पे मबनी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे दोबारा भी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान में ओपन हालत में इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना झूठ है, आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो वो फेयर हो। आज सब इन्होंने पीटीआई की नजरसानी की अपील को मुस्तरद कर दिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। हालांकि जिन पार्टियों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का दिखाया उनके भी सर एवरीथिंग इज बनाई गई है, यानी जो जिसको मुस्लिम लीग नून में बहुत फूट है, बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग नून को इसलिए छोड़ा कि मुस्लिम लीग पुराने कारकुनान को मौका ही नहीं देती सिर्फ ये कि, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो किसी के भी फेयर नहीं है।
नहीं किसी के भी नहीं, कतल नहीं।
आपके बुकला क्यों डिवाइड हो गए?
देखने हम डिवाइड अगर एक बहुत बड़ी ताकत है उसे तो आप इनकार नहीं करते। पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके तो अपने ही वारे में आ रहे हैं, वो तो सुनहरी ताज लेकर पैदा हुए सारे के सारे। अब अगर जिस तरीके से इन्होंने आके हमको डिवाइड किया है, अब लोगों के वो शख्स जो मामूली भी फाइनेंशियली मामूली हैसियत का आदमी था, आज वो इस मुल्क में करोड़पति अरबपति है। तो इस किस्म के लोग अब इस मुल्क में इलेक्शन जो हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ने के लिए उस पे हर आदमी, ये जो इस वक्त भी बैठा हुआ है शहजाद, इसने 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए। जब इलेक्शन के लिए 5.5 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, तो वो आदमी क्या वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, क्या करेगा? इस मुल्क में हर चीज को इतना कॉस्टली कर दिया गया है, इतना रुपए पैसे के इतना इन्वॉल्वमेंट की गई है
कि बिकाऊ कर दी, अब
हर चीज बिकाऊ कर दी। अब जैसे ये कि जिस तरह ये वोट खरीदे गए हैं, जो भी अगर कीमत बाजार में रूमर्स के हवाले से आ रही है कि इतने 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 करोड़ दिए गए या 1 बिलियन रुपीज दिया गया, कोई आदमी ये नहीं कहता कि यार ये झूठ हो सकता है, कहते है नहीं सही है। तो यही मैं कहता हूँ कि जब आप पैसे के बल बोते पे वोट लेंगे, पैसे के बल बोते पे आप वो आइन में सारी उखाड़ पछाड़ करेंगे, जिसको तो रेडी वाला भी नहीं मानता। जब रेडी वाला नहीं मानता, खांचा फ्रोच नहीं मानता, आम आदमी नहीं मानता, गरीब तो वैसे ही इस मुल्क के उनका इस हुकूमत और इस पार्टी के कोलिशन पार्टी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि वकला को एक मौका कुदरत ने फिर दिया है और हम लोगों में इतनी अवेयरनेस पैदा करेंगे। हालांकि पहले से इस मुल्क के हवा में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, मगर हम उस अवेयरनेस को इतना शार्पन करेंगे, इतना तेज करेंगे, इतना उसको आगे ले जाएंगे कि इस मुल्क में जितना भी इस किस्म की गलत कारियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, ये सारी चीजों के लिए लोग जहनी तौर पे आगे आए और इन सारी चीजों के खिलाफ जदोजहद करें।
बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। आज फाइनल चीज ये है कि 26वीं तरमीम जो है इसका आईनी बिल सदर को भेजा जाएगा और अगर सदर इसको दस्तखत कर देते हैं तो ये आईन का हिस्सा बन जाएगा। तो क्या आप इसको रिवर्ट करवा सकेंगे?
नहीं, आपके मैं नोटिस में ले आऊं कि सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, अब ये लीगली आईन का हिस्सा बन चुके हैं,
तो आप रिवर्ट कर सकेंगे।
अब देखे ना, बात ये है, पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री को, अगर जुडिशियल हिस्ट्री को आप उठाकर देख लें, पाकिस्तान की देखें, चौधरी इफ्तिखार को 2 दफा अपने मनसब पे रिस्टोर कराना आपके ख्याल में कोई आसान काम था? 20 जुलाई और 16 मार्च को चौधरी इफ्तिखार को अपने मनसब पे वापस ला के रिस्टोर कराना कोई मामूली काम तो नहीं था। इसके लिए वकला को 2 साल का अरसा जो है सड़कों पे गुजारना पड़ा। 2 साल के अरसे में हमने वो कुर्बानियां दी कि आज भी वकील समझते हैं कि इस मुल्क में अगर कुर्बानियों का हिसाब किताब हो तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान के वकला ने दी है। 12 मई को जब हम सुप्रीम कोर्ट, हम जब कराची जा रहे थे, میں تھا, باقی ساتھی تھے, چودھری افتخار تھے, ہم کراچی ایئرپورٹ پہ تھے اور اس وقت جو ہے باہر گولیاں چل رہی تھی اور 42% ہمارے ساتھی جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں. سائیوال میں ہمارے وکیلوں کے چہروں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. 17 غالباً اسلام آباد میں 17 تاریخ تھی, ہم جا رہے تھے اس کنونشن کو اٹینڈ کرنے, تو روزوں اس کی وجہ سے نماز کی وجہ سے ہمارے ساتھی رک گئے, تو اس سے تھوڑا سا ٹائم جو ہم نے کنزیوم کیا نماز پڑھنے میں, جب اس دوران میں ہم گئے تو اس سے پہلے بم بلاسٹ ہو چکا تھا, ڈیوائس کوئی انہوں نے پہلے سے فکس کیا ہوتا اور ہمارے 17 ساتھی مارے گئے. اسی طریقے سے آپ کراچی میں ہمارے وکلا کو دفتروں میں جلا کر ان کو شہید کیا گیا. لاہور میں آپ دیکھیں, ہر جگہ آپ دیکھیں, کوئٹہ میں سب سے پہلے ہمارا جو جونیئر وکیل ساتھی تھا زمان مری, وہ شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو ہم وکیلوں نے تو ہمیشہ قربانی دی, مگر کبھی میں نے آپ کو کہا کہ کبھی ہم نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, کبھی ہم نے ریٹریٹ نہیں کیا, جو قدر آگے بڑھا ہے.
یا اجاز مجھے پلیز, میں آج ہی آن ایئر ہی آپ سے 25 تاریخ کے بعد دیکھتے ہیں فائزی صاحب اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. میں 25 کے بعد مجھے ٹائم پلیز ضرور ایک دفعہ دیجیے گا, میں آپ سے ایک بار پھر ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. آئی وش آل دا بیسٹ فار دا کنٹری اور آپ کا بے انتہا شکریہ. علی احمد کرد صاحب ویری ریناؤنڈ پرسن اور جتنی تحریکیں وہ کلا کی چلی اس میں دا مین نیور کمپرومائز ان ہز لائف ہیز نو اسپاٹ ان ہز پاسٹ. بہت شکریہ سر آپ کا فار بینگ ود می.
تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی.
اجازت دیجیے گا.
بڑی مہربانی,
شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا, درمیان کی لائنوں میں سے آپ خود اخذ کیجیے گا. آپ امیجن کریں کہ 25 سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاس کروانا تھا, ہو گیا, مبارک ہو آپ سب کو, پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا, مگر اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ضرور. پوزیشنز بھی ان لوگوں کے پاس رہیں گی, آپ لوگوں کی اپنی اپنی پارٹیاں بھی رہیں گی, آپ لوگوں کے لیڈرز بھی رہیں گے, مگر ملک کا کیا بنے گا یہ اللہ مالک ہے. ابھی دیجیے گا, وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
کینیڈا میں 20,000 ڈاکٹرز ہیں جو میڈیسن پریکٹس نہیں کر سکتے اور 32,000 نرسیں ہیں جو ہمارے ہسپتالوں میں کام کرنے سے روک دی گئی ہیں. ہزاروں دوسرے پیشہ ور لبرل گیٹ کیپرز کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے. بس اب بہت ہوا, کنزرویٹو لیڈرز پیئر پالی ایک بلو سی ایگزامپل لے کر آئیں گے تاکہ نئے آنے والے ثابت کر سکیں کہ وہ ہمارے اعلیٰ معیارات پر پورا اترتے ہیں اور مریضوں کی مدد کے لیے فوری اپنی جاب شروع کر دیں. یہ کامن سینس ہے. یہ پیغام پیئر پالی اور کامن سینس کنزرویٹو کتابوں سے پیش کیا گیا.
سموسا سویٹ فیکٹری تے 26 اکتوبر تو 1 نومبر تک آ رہا ہے نارتھ امریکہ دا سب تو بڑا انڈور دیوالی مٹھائی میلا ایلیٹ بینکٹ ہال وچ. برمی لوکیشن دے وی انسائیڈ چلو فریش کو لگو گا منی مٹھائی میلا. سارا ڈسپلے ہمیشہ دی طرح پر مٹھائیاں دی شدتا تے ورائٹی بالکل نویں تے تازہ. دیوالی مٹھائی میلا تے لکی ڈرا وچ تسی جیت سکدے ہو 2 سیمسنگ S23 سمارٹ فونز, 3 سمارٹ ٹیبلٹس, 5 مائکرو ویوز, 5 ایئر فرائرز اینڈ مینی مور. وزٹ 1850 ایلوین روڈ ٹوبیکو اور کال ایٹ 4 1 6 2 1 3 11 65. Samosa Sweet Factory wishing you all a very happy Diwali.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ بھی چلانے ہو مینوئل جا آٹومیٹک کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
ساڈے کول یوجنا ہے جو کہ اونٹیریو نو جوڑ رہی ہے. روزانہ آواجاہی نو کٹاؤن لئی نویاں سڑکاں تے ہائی ویز دا نرمان اتے ود رہے علاقیاں نو جوڑن لئی پبلک ٹرانسٹ دا وستار. یہ سب اس لئی تاں جو تسی تیزی نال سرکھیت اتے آسانی نال آن جان کر سکو. ontario.ca/builds تے جا کے ہور جانو. اس دی ادائیگی اونٹیریو سرکار ولوں کیتی گئی ہے.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773
7737 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 6472903773 ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟੈਮ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦੀ ਲਿਆਉ ਮਠਿਆਈ ਟੇਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮ ਖਾਣੇ ਮਿੱਠੀਏ ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜੀ ਪਰ ਖਾਓ ਵਧੀਆ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲਓ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਡੱਬੇ ਪਹੁੰਚੋ 680 ਰੈਕਸਡੇਲ ਬੁਲੇਵਰਡ ਔਰ ਕਾਲ 416-679-9191 ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਦ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਧਰੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ $44 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ontario.ca/rebuilding our economy ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਦਾ
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
के कनाडा जिसको हम जानते हैं इन दिनों पीछे की तरफ जा रहा है ट्रूडो और एनडीपी लिबरल्स के 9 सालों के बाद अखराजात बढ़ गए हैं सड़कें खतरनाक और गैर महफूज हैं और लोग गुर्बत में जी रहे हैं लेकिन हम चीजों को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन सेंस लीडर कंजर्वेटिव पे पॉलिफ के पास एक मंसूबा है जिसका मतलब होगा कि सख्त मेहनत करके एक भारी आमदनी हासिल की जा सके सस्ती खुराक और मकान खरीदा जा सके और महफूज मोहल्लों में जिंदगी गुजार सके उस मुल्क में जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं आइए मिलकर एक बेहतर कनाडा बनाएं यह पैगाम पे पॉलिफ और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव के तआवुन से पेश किया गया
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का
लाहौरी स्टाइल नाश्ता मजेदार कढ़ाई मल्क वॉटरिंग कबाब में सिजलिंग बारबेक्यू आइटम
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल
Messages and chit-chat.
वेलकम बैक तमाम सामाइन को जो हमें 770 एम डायल सुन रहे हैं। प्रोग्राम साजो आवाज, जनाब हम आ गए हैं आमिर अहमद और हमारे साथ खट्टी मीठी खबरें लेकर शाजिया मलिक साहिबा भी आ गई हैं। हमारा और आपका सफर तकरीबन 6:30 बजे तक आज भी रहेगा। हफ्ते का पहला दिन मंडे, सोमवार, बड़ी मुश्किल से याद किया मैंने, सोमवार सही बोला हुआ है वो। और आई होप कि आप लोगों की जिंदगी जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। वेदर बदलाव, ऐसा लग रहा है कि मुझे रिवर्स होता है ना, यू टर्न, रिवर्स गियर लग गया है वेदर को। और आज जो वेदर, बल्कि वीकेंड से ही जो वेदर है तो वो ऐसा है कि फील लाइक शाहरुख खान। एंजॉय करें जनाब वेदर को, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। आई होप कि आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। खासकर आप 770 सुन रहे हैं, ई आवाज टीवी देख रहे हैं, तो इसके बाद तो कहते हैं ना कि वो क्या होता है, अंडरस्टूड पे दोस्त टूट, ये वो वाली चीज है। तो आप जो है जरूर खुशोखुर्रम रहेंगे अगर आप 770 एम डायल सुन रहे हैं। अगले तकरीबन 30-45 मिनट्स आपने 770 जरूर सुनना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं जाएगा ना, मैं आपको साउंड इफेक्ट के साथ आपकी तब्दील करा दूंगा जिंदगी। आपको अभी हल्की हल्की आपको आ रही होगी साउंड इफेक्ट पीछे से, वही साउंड इफेक्ट है जनाब। शाजिया मलिक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं विद साउंड इफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं?
WS हम ठीक हैं, तुम कैसे हो?
डब्ल्यू अल्हम्दुलिल्लाह, WB WT।
ओ माय गॉड, अमिर तुम्हारा जो ड्रामे का जो स्टेमिना है ना, उसमें निखार आता जा रहा है
अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, और अभी तुम कह रहे थे ना अगर 770 सुनेंगे तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, जिंदगी गुलजार हो जाएगी। आपने देखा था ना वो ड्रामा?
मैंने सुना है, हिट ड्रामा था,
तो बड़ा हिट आंट
था। 770
सुनेंगे तो जिंदगी गुलजार रहेगी,
गुलजार हो जाएगी। अब वो गुलजार साहब वाले गुलजार है, ये कौन से गुलजार है, लेकिन मैं ये कहता हूँ।
खैर, अब गुलजार साहब जब केस करेंगे अच्छी तरह पता चलेगा,
करिएगा मुझ पर नहीं। मैं इससे भी कहता कि आप खुशोखुर्रम रहेंगे, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी।
अच्छा, तो ये बहार बेगम कौन है आजकल, ये कौन है जिनके साथ तुम फिरते नजर आते हो? बहार बेगम कौन है वो, भाई बताओ।
ये पैसे नहीं है, देखिए आप लोग एक माँ है जो वो यहाँ बैठती है, दूसरी सीट पर भी आप बैठी हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़नी होती।
अच्छा अच्छा,
मरवाने में देखिए अभी नया नया हफ्ता शुरू होता है।
अच्छा, तो और उसमें तुम काली जैसे ही हफ्ता शुरू होता है काली शर्ट पहन के आ जाते हो।
वीकेंड खत्म होते ही मैं काला हो जाता
हूँ, क्योंकि वीकेंड में नीले पीले हुए होते हो।
नीले पीले हुए, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बहरहाल
चेयर
पे बैठ के ना, ये बेगमात और बहार बेगम,
चलो ठीक है, ये बाद में बार मिलना, फिर बात करेंगे। बार मिलना फिर ठीक है, चलो उस पर बात करेंगे।
खुशोखुर्रम रहने दे।
अच्छा ठीक
है। वैसे ही देखिए बाहर के साथ साथ लोगों के अच्छे मूड हो रहे हैं, अच्छा मौसम आ रहा है, अच्छे इंटरेस्ट रेट होने जा रहे हैं, हालांकि $26 कम हुए टोटल।
और तुम तो उसमें स्विट्जरलैंड जा सकते हो, तुम जाओ क्यों नहीं हो?
अल्लाह करे,
इतने पैसे बचा लिए।
मैंने वो कैलेंडर पर रोजाना क्रॉस कर देता, अच्छा जी आज हो गया जुमरात कट, अब कल एक और कट और बुध को अनाउंसमेंट करेंगे आज जब आज अभी आरफा पर और ये सब
23rd को
ये डेविस साहब जो आज आए हुए थे वो भी जब बात कर रहे थे, और मैंने कहा काश ये 0.50 हो जाए तो 25 की जगह 50 कम हो जाएंगे, $50 ही बचेंगे, तो चलो कम से कम एक वक्त,
चलो स्विट्जरलैंड एक शहर के बजाय दो शहर फिर लोगे,
दो शहर में कम से कम घूम लूंगा,
घूम लोगे, यस
बस फिर मजा ही मजा है,
मजा ही मजा है,
जिंदगी गुजार है,
जिंदगी गुजार है। बिल्कुल, चलो जी हम आपकी गुजार बचाते हैं, क्योंकि आपने बड़ी शिकायतें की है मेरी आमिर को, उनको जो है छुट्टी उनको नहीं करने देनी। देखो पहन, ये इतना जुल्म मेरी मासूम जान पे ना करो, ये जो आमिर है ना ये तो लकड़ हजम पत्थर हजम है ना, ये तो इसको तो कुछ नहीं होता नहीं। लेकिन मासूम बड़ा वैसे बीमार रहा है पिछले दिनों में, लेकिन देखें जी मैं तो जो है वो वैसे ही मतलब एज का भी मामला पता ही है, कितनी दफा आमिर ने बताया 1945 की मेरी पैदाइश है, समझा करें आप, बहुत बुढ़ापा आ गया है, ये तो जो मुंह पे आई ये सारी वेल्डिंग की हुई है मैंने, उसकी वजह से आपको जरा मैं सही नजर आ रही हूँ, ये वेल्डिंग जैसे ही उतरेगी ना आप डरेंगे मेरे से, तो ऐसा काम ना करें मेरे साथ कि किसी दिन वेल्डिंग उतार के मैं आ जाऊँ और आप डरें, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन। वो कहते हैं जी फायरवर्क्स का हमने बैन लगाया है, यानी उनका कहने का मतलब है साढ़े शहर तो खरीद सकते हो तुसी, लेकिन साढ़े शहर के बीच पटाखे फाड़ नहीं सकते। पटाखे अगर आपने फाड़ने हैं आप मेरे से सागा जाए, आमिर के शहर में जाए। نہیں یہ سیٹی آف برمپٹن نہیں کہہ رہا، یہ ہم کہہ رہے ہیں. اچھا جی، سیٹی آف برمپٹن کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فائر ورکس بائی لاز ہیں اس کے اندر آپ کوئی کسی قسم کا پٹاخہ پھاڑ نہیں سکتے، چاہے جو ہے نیو ایئر کا ایونٹ ہے، چاہے دیوالی ہے، چاہے کرسمس ہے، چاہے کچھ بھی ہے، آپ پٹاخہ نہیں پھاڑ سکتے. اور اگر آپ نے ایسا پٹاخہ پھاڑا جیسے کہ یہ راکٹ یہ چلائے، گراؤنڈ اسپنرس، فاؤنٹینز، فلائنگ لینٹرنز، بام شیلز، یہ اگر آپ نے چلائے تو آپ کو 500 سے 1000 ڈالر تک کا فائن ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100,000 ہو سکتا ہے. تو جناب جتنا بچ سکتے ہو بچو، اور زیادہ انفارمیشن کے لیے آپ دیکھ لیں ان کو brampton.ca/fireworks پہ جا کے زیادہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے. اور جناب راجہ بادشاہ جی، انہوں نے میرے اور ذیشان کے ساتھ بہت بےمانی کی ہے، میرے 400 اور ذیشان کا 100 ڈالر بچایا ہے، عامر کے 1775 بچائے ہیں. اگر آپ عامر کے فین ہیں تو آپ عامر کا نام لے کے راجہ بادشاہ جی کے پاس جائیں، آپ کے ڈھیر سارے پیسے بچیں گے. اور یہ آل اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اور ان کا نمبر ہے 6472903773. اوپن کفے، وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے انجوائے کا مزہ لینا ہے، مزے کے کھانے کھانے ہیں، تو ہمارے پاس آئیں. 1310 ڈیف اسٹریٹ ایسٹ مسیساگا کے اندر ہیں یہ، ان کا نمبر ہے 4165266800. ویسے ان کے یونٹ کا بھی نمبر میں آپ کو بتا دوں، یونٹ 3 ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، اونٹاریوز لارجسٹ حلال پاکستانی بفے ویلج ٹیسٹ، ویلج ٹیسٹ میں بھی زبردست قسم کے کھانے ہوتے ہیں. ویزل چٹا صاحب ہیں، دو ان کے ریسٹورینٹس ہیں، ایک مسز ساگا میں اور ایک اوکفل میں، آپ جائیں اور انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں. ادھر بھی مسز ساگا کا نمبر ہے ریسٹورینٹ کا 9052323663، اور جو اوکفل کا ریسٹورینٹ ہے اس کا نمبر ہے 9052262294. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بڑی خبر سنا دیں کہ بیچاری جو بدبختیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں ٹروڈو صاحب کی. ہاؤس آف کامنس جو ہے آج آ کے بیٹھ گئے ہیں، جیسے ہی آ کے بیٹھے ہیں انہوں نے جناب ساڑھے معصوم جنتی ٹروڈو صاحب کو کھینچنا شروع کر دیا. یہ لانگ ویک لانگ جو تھا یہ بریک تھی، اس کے بعد آج انہوں نے لگا ان کو کہ ٹروڈو صاحب کو کہ بزنس ایز یوزول ہوگا، بٹ بزنس ایز یوزول نہیں تھا. یہاں پہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس نے کہا جی کہ وہ تمام ڈاکیومینٹس ہمیں دکھاؤ جو کہ آپ نے گرین ٹیکنالوجی پروجیکٹس کے اندر آپ نے جو اسپینڈنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے جو یہ ابھی جو میٹر آف پریویلیج ہے اس کو یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر یہ اب آئے گا تو اب جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ کیسے کام کرے گی. جگمیت سنگھ صاحب جو ہے انہوں نے اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا جو ہاؤس سپیکر ہیں گریگ فرگس کو، اور ان کو کہا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے آر سی ایم پی کے جو الیگیشنز ہیں انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹس کے اگینسٹ ہو آر انوالوڈ ان مرڈر، ایکسٹارشن، کوئرشن. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو یہ کینیڈینز کے لیے بڑی پریشان والی بات ہے اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ٹروڈو صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑے سارے ان کی لیڈرشپ کے اوپر بڑے ہیں. اور کچھ میڈیا رپورٹس میں آیا کہ کچھ لبرل ایم پیز جو ہیں وہ اب شاید آنے والے دنوں میں وینزڈے کو، جیسے فار ایگزامپل ان کا کاکس کا میٹنگ ہونے والا ہے لبرلز کا، تو اس کے اندر ان کو کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پولز نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے جیتنے کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہیں. ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ پروروگ کر سکتے ہیں اس پارلیمنٹ کو، حالانکہ پروروگ بہت کم یوز کیا جاتا ہے، یہ والی جو پرائم منسٹر کی پاور ہوتی ہے، اور وہ سیشن کو اینڈ کر سکتے ہیں اور نئی جو ہے تھرون سپیچ لے کر آ سکتے ہیں. لیکن اس کا کچھ اتنا وہ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے پراسپیکٹ. پرائم منسٹر جو ہے اس کے علاوہ خبر آئی ہے اندر کی، اور یہ اندر کی خبر ہے بالکل، کہ پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ اپنی ری شفل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ چار منسٹرز جو ہیں اپنے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا یہ اب چاہے اکتوبر میں نیکسٹ ایئر الیکشن ہونے والا ہے یا کہ اگر ابھی دسمبر میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس لوز کر گئے تب ہے، تو اب لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ جو چار منسٹرز اب ریپلیس کیے جا رہے ہیں ان کا کیا فائدہ. اس کا جواب دیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نیکسٹ الیکشن میں وہ رن نہیں کریں گے، تو اس لیے اب نیا اس لیے انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی فیملیارٹی جو ہے ان لوگوں سے ہو جائے. تو یہ چکر ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جی وہ اب منیمم آورلی ویج جو ہے ٹیمپرری فارن ورکرز کی اس کو اب بڑھا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی کوئی امپلائرز ہائر کریں گے اب لوگوں کو، ان کو اب جو ہے یہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ سسٹم، جس کو ایل ایم آئی اے بولتے ہیں، اس کے تھرو جو ہے وہ ویجز دینے پڑیں گے. امپلائمنٹ منسٹر جو ہیں رینڈی بوسنالٹ، انہوں نے جو ہے وہ کل اناؤنسمنٹ اس چیز کی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ اس کو یہ جو منیمم ویج ہے اس کو 20% تک پروونشل میڈین جو آورلی ویج ہے اس سے انکریز کر سکتے ہیں. یہ انفورس کیا جائے گا 8 کو. اور وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ حالانکہ लिबरल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खींचा गया कि हाउसिंग शॉर्टेज हो गई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लोगों की वजह से बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये मीडियन आवरली वेज जो है 28.39 जो है ये वैसे ये तो मुझे लगता है कि हाई ब्रैकेट वेज ब्रैकेट में आती है, इससे तो कम ही है, लेकिन वो कहते हैं जी ये करना जरूरी है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेडियन जो स्टाफ है उसको एम्प्लॉय करें। तो अब ये जो नई चेंज आएगी इसके मुताबिक फिर अब एम्प्लॉयर्स को 34.07 पर आवर जो है वो वेजेस देने पड़ेंगे और जाहिर है कि कुछ सेक्टर्स में नॉट दिस इज नॉट फॉर एवरी सेक्टर एंड दिस इज ओनली फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स स्पेसिफिकली, आप ये ना समझे कि ये ओवरऑल सबके लिए किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये तकरीबन 34,000 जो ऐसे टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं उनको इफेक्ट करेगी ये LMIA और अकॉर्डिंग टू IRCC यानी कि जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है उसका डाटा शो करता है कि 183,820 टेम्पररी वर्कर्स थे जिनको दिए गए थे परमिट्स दिए गए थे विच वर इफेक्टिव इन 2023 विच वॉज अ राइज फ्रॉम 98,025 इन 2019 तो विच शोड एन 88% इंक्रीज इन टेम्पररी वर्कर परमिट्स जो के ग्रांट किए गए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि वर्क फोर्स के अंदर जो विजिट वीजा पे या इधर उधर से वैसे ही आए हुए हैं उनको ना करें, जो कि हैं इधर कनेडियन वर्कर्स हैं उनको आप ज्यादा प्रेफरेंस दें। फोर्ड गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस किया है कि फॉर्मर फेडरल लिबरल हेल्थ मिनिस्टर जो है जेन फिलटॉप उनको चेयर बनाया जाएगा प्राइमरी केयर टीम का और फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। वो कहते हैं जी कि अकॉर्डिंग टू ऑन्टेरियो मेडिकल एसोसिएशन 2.5 मिलियन ऑन्टेरियंस जो हैं वो विदाउट फैमिली डॉक्टर्स हैं। फिलटॉप जो कि डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज एट क्वींस यूनिवर्सिटी एंड शी इज द डायरेक्टर ऑफ इट्स स्कूल ऑफ मेडिसिन, वो चाहती हैं कि 100% ऑन्टेरियंस जो हैं उनके पास फैमिली डॉक्टर या नर्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो होने चाहिए और एक पब्लिक फंडेड टीम होनी चाहिए जो कि इसको सबको देखे। ऑन्टेरियो की हेल्थ मिनिस्टर सिल्विया जोन्स ने कहा है कि वो किसी पे इस चीज के लिए ट्रस्ट नहीं करती हैं सवाए मिस फिलपॉट के और इसलिए उन्होंने कहा जी कि इनको जो है लगाया जाए। अगर इनको अगर ये एक्सेप्ट कर लेती है पोजीशन तो जाहिर है कि फिर 1 December से ये अपनी नई पोस्ट के अंदर काम करेंगी। वो कहती हैं जी कि मैं इंश्योर करूंगी कि लोग जो हैं वो डॉक्टर्स यानी कि कुछ वीकेंड्स के ऊपर भी काम करें और आफ्टर आवर्स भी करें ताकि लोगों को आसानी से फैमिली डॉक्टर्स मिल सकें और ये जो बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है इसको भी कम किया जा सके। इसी तरह जो प्राइमरी केयर प्रोफेशनल्स हैं वो और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके बीच में कनेक्शन जो हैं उनके बीच में ये सब कुछ इम्प्रूव किया जाए और डिजिटल टूल्स ज्यादा यानी कि ज्यादातर लोगों को जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्लिनिक्स में आके उनको विजिट करें डॉक्टर्स को, ईमेल पे अगर कोई बात की जा सकती है तो भी जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए। लिबरल्स जो हैं उनकी तरफ से जी सूजन होल्ट जो हैं, ग्रीन्स की तरफ से डेविड कून जिन्होंने के उनको लास्ट टर्म में भी किया था और लीड किया था और जो हैं वो सारे ये फाइट कर रहे हैं जो न्यू ब्रंसविक के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं आज। सूजन होल्ट जो है उन्होंने तो कोई 100 प्रोमिसेस कर दिए हैं, डेविड कून जो है उन्होंने भी बेशुमार प्रोमिसेस कर दिए, उन्होंने कहा जी कि $380 मिलियन हम जो है इस साल के एंड तक हम खर्च करेंगे और हॉस्पिटल्स जो हैं उनको बड़ा डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो ये इस तरह की बड़ी मिलीजुली बातें हैं। डेविड कून जो हैं ग्रीन्स के वो तकरीबन 2012 से टीम को लीड कर रहे हैं। इसी तरह यहां से न्यू ब्रंसविक से पीसी के जो लीडर हैं ब्लेन हिग्स वो तो दो दफा अभी जो हैं वो इधर लीड कर चुके हैं पार्टी को भी और प्रोविंस को भी और अब वो थर्ड टर्म जो है वो सीक कर रहे हैं। ये जो थी पार्लियामेंट जो थी इसको डिसॉल्व किया गया था और ये 49 सीट की लेजिस्लेशन है, इसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के पास जो थे 25 सीट्स थे, लिबरल्स के पास 16, ग्रीन्स के पास 3 और इंडिपेंडेंट के पास 1 और 4 सीटें जो थी वो खाली थी। तो अब ये तो बड़ी काफी टाइट रेस होने वाली है और न्यू ब्रंसविक वाले जो हैं उनको कहा गया था कि भई आप पोलिंग स्टेशन में सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अब पोलिंग कर सकते हैं, तो अभी आज रात 8 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी और उसके रिजल्ट जब कल आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। एंगस रीज इंस्टीट्यूट जो है जी उसका एक सर्वे आया है और उसके मुताबिक जो है हाई ग्रोसरी एंड हाई रेंट कॉस्ट जो है वो कनेडियंस को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर रहे हैं एंड ऑफकोर्स इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी है। 51% ऑफ वो जिनका के सर्वे किया गया था उन्होंने कहा जी कि हमारे जो है चैलेंजेस हैं जो हाउस होल्ड फूड नीड्स हैं उसके लिए और ये तो जो नंबर है ये मोर और लेस सेम ही है जब इन्होंने सर्वे किया था 2021 में। बहुत सारे लोगों ने कहा जी, जो तकरीबन 65% लोग हैं कि वो ये जो हाई कॉस्ट हैं इनसे फाइट कर रहे हैं, और इनमें से जो 65% ही ये लोग थे, इन्होंने इनकी जो इनकम थी 50,000 से कम थी। 33% ने कहा वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 23% ने कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। 22% ने कहा हम कंफर्टेबल हैं। 22% ने कहा हम अनकंफर्टेबल हैं। 25% ने कहा जिनकी के इवन इनकम 200,000 है वो भी मुश्किलें फेस कर रहे हैं। 3 in 10 रेंटर्स यानी कि 30% लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हम घर चाहते हैं कि हम ले लें लेकिन हम ले नहीं सकते। 2 in 5 यानी कि 41% जो है उन्होंने कहा जी कि हमने तो अब सोचना ही छोड़ दिया कि कभी हम घर ले सकते थे। 1 in 5 यानी कि 17% ने कहा कि हम एक्टिवली घर देख रहे हैं और हमें लगता है कि हम जल्दी घर ले लेंगे। 12% ने कहा कि हम घर ओन नहीं करते हैं। तो लोगों ने ज्यादातर कहा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। एंड एंगस रीड कहता है कि ये जो सारी की सारी तकलीफ और प्रॉब्लम्स हैं ये 7 पॉइंट्स नीचे आ गई हैं, यानी कि 42% पे अब स्टैंड करती हैं कंपेयर टू लास्ट सितंबर जब हमने ये सर्वे किया था, व्हेन दिस रेट वाज 49%। तो चीजें जो हैं वो जाहिर है कि इतनी कोई अच्छी नहीं है। आज जनाब यूनाइटेड नेशंस जो है उसका एक पूरी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा जी कि थर्ड कंट्रीज जो कि एनेबल कर रहे हैं इसराइल को अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टेरिटोरीज और उनको असिस्ट कर रहे हैं कि वो ये वॉर जो है वो बढ़ाए रखें, वो पॉसिबली गाजा के अंदर जो जीनोसाइड है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज का जिक्र जो है नवी पिलाई ने हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उसमें उन्होंने कहा है। ये जाहिर है कि ये जो मीटिंग हो रही है अब इन सारों की उसके अंदर जो है इन्होंने जो इन लीडर्स की उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसराइल जो है वो इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है और जो भी कोई स्टेट इसका साथ दे रही है, जो भी कोई स्टेट इसको एनेबल कर रही है इसराइल को कि ये वो अनलॉफुल ऑक्यूपेशन पैलेस्टाइन का कंटिन्यू करे या उसको वेपन्स दे रही है कि वो ये वायलेशंस और वॉर क्राइम्स करता रहे, तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है और सबसे पहली ऑब्लिगेशन जो है इसके ऊपर इसराइल के ऊपर है कि वो ये सारा कुछ जो है वो रोके। जनरल असेंबली के अंदर ये एक वोट हुआ है जिसके अंदर उन्होंने इसराइल को कहा है कि वो अंडर इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इमीडिएटली ये सेटलमेंट एक्टिविटीज जो है वो उसको बंद कर सके और फिजिकली इवैक्यूएट करे ये जो है सारे इलाकों से। जीशान वो जो सारे यूरोपियन लीडर्स की जो तस्वीर है वो जरा दिखा दें जिसमें कि इन्होंने ये आज सारा डाटा लेकर ये सामने आए हैं। इसमें उन्होंने कहा जी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो इनको बनाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस की ये जो हेड ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन है नेवी पिलाई, इनका कहना है और इन्होंने कहा जी कि ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये जो पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर दिए गए, उनको नहीं दिए गए, उनको फौरन दिए जाए जो कि 1961 में उनको हासिल थे। उन्होंने कहा जी सिंस 1967 700,000 इसराइली सेटलर्स जो हैं वो इलीगली इनके अंदर आके बस गए हैं और 500,000 इसराइलीज जो हैं वो ओवर 100 सेटलमेंट्स में वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनको फौरन वो इलाका खत्म करना चाहिए क्योंकि ये लोग मेन ऑब्स्टिकल्स हैं इन अप्लाइंग ओस्लो एकॉर्ड। और पिल्ले साहबा ने ये भी कहा कि जी ये जो इनकी टेरिटोरियल और सॉवरेनिटी के क्लेम्स हैं पैलेस्टाइन के ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज में उसको भी जो है वो रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा जी कि अंडर जीनोसाइड कन्वेंशन जितने भी कंट्रीज इसको अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल है और ये सारे मेजर्स लेने बहुत जरूरी हैं ताकि जो साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये सारे एक्यूजेशंस इनके ऊपर लेकर आया है इसको जो है वो हटाया जा सके कि कहीं ये जीनोसाइड तो नहीं कमिट कर रहा गाजा में। अजय भी जरा यानी कि इन्होंने शाके बहरहाल आज ये काफी सख्त किस्म की जो है यूनाइटेड नेशंस की आइए बहरहाल होना चवाना कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ओबामा साहब जो हैं जी वो अब हैरिस साहिबा के साथ बड़ा जी उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कैंपेन में और उन्होंने आज क्वेश्चन किया है ट्रंप साहब का स्टेमिना कि इतना बड़ा जो ऑफिस है यानी कि जो प्रेसिडेंट का जॉब है अमरीका का प्रेसिडेंट उसको ये कैसे जो है कंटिन्यू करेंगे जबकि ये कैंपेन भी ठीक तरह से नहीं कर सक रहे हैं। ये आज जो एक स्विंग स्टेट थी एरिजोना की उसके अंदर कमला हैरिस के साथ थे और रैली जो हो रही थी टक्सन में उसमें ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये सेकंड टर्म जो है उसमें सर्व बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, उनको आप देख लें कि ये क्वेश्चन उनके इंटेंशन का नहीं है, ये क्वेश्चन उनकी कॉम्पिटेंस का है और वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। उन्होंने कहा जी कि आपने उनको देखा ये दो दो ढाई ढाई घंटे स्पीचेस करते हैं और सिर्फ वर्ड सैलेड 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 बोलते रहते हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था अमर साहब का कि उनकी एक लफ्ज उनका समझ नहीं आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने सॉरी रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने कहा जी कि जो ट्रंप साहब हैं वो यंग इनफ हैं और वो मेंटली भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, तो आपको इसके लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हैरिस साहबा जो है वो भी ये जो मस्ट विन स्टेट है मिशिगन उसके अंदर थी और वो कह रही हैं जी कि ट्रंप साहब जो हैं ये रिगर्स ऑफ कैंपेन जो है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो अपना जॉब कैसे करेंगे उसके लिए वो फिट नहीं है। हैरिस, ओबामा और उनकी वाइफ जो मिशेल हैं वो कॉन्स्टेंटली स्विंग स्टेट्स के अंदर जो है वोटर्स को कह रहे हैं कि वो जो है ट्रंप साहब का साथ ना दें और इनका साथ दें हैरिस साहिबा का। एरिजोना के अंदर जो अभी पोल हुआ उसमें शो किया जा रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो 2 पॉइंट्स हैरिस से आगे चल रहे हैं। मिशिगन के अंदर हैरिस साहिबा जहां पे बात कर रही थी उसमें वो ट्रंप साहब से लेस देन 1 पॉइंट से ट्रंप साहब से आगे हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो बड़े डेंजरस हैं, एंटी डेमोक्रेटिक हैं और भी इस तरह की बहुत सारी अफवाहें जो है उनके लिए फैला रहे हैं। तो ये जनाब अमेरिका के अंदर हो रहा है। इसके साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई सानू तो जी कोई मिलियन डॉलर देने तैयार नहीं, इतने देखो जरा की अनी पाई हुई है कि आज अमेरिका में बड़े क्वेश्चंस रेज किए गए हैं क्योंकि एलोन मस्क साहब जो मिलियनेयर हैं उन्होंने आज अनाउंस किया है कि स्विंग स्टेट्स के अंदर जो जो लोग जो है वो साइन करेंगे ट्रंप साहब के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे और फिर रैंडमली किसी भी एक बंदे को जो है वो उठाया जाएगा क्राउड में से या इलाके में से जिन्होंने किन के लिए साइन किया है और उसको 1 मिलियन US डॉलर्स दिए जाएंगे। ये जो है इन्होंने अपनी एक कैंपेन चलाई है इनके ग्रुप ने अमेरिका पैक, और इसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि ट्रंप साहब को सपोर्ट करें, खासतौर पे जो ये स्विंग स्टेट्स हैं उसके अंदर आप अगर साइन करेंगे पर डे तो आप मिलियन डॉलर्स तक जीत सकते हैं। ये जो स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट्स इनका हम आपको बता दें ये हैं जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नॉर्थ कैरोलिना। और वो कहते हैं जी कि जो किसी को दूसरे को रेफर करेगा इसको साइन करने के लिए उसको 47 डॉलर्स ईच बंदे को, यानी कि जिसने साइन किया और जिसने साइन करवाया दोनों को मिलेंगे। इसके अलावा 100 डॉलर्स जो है ऑफर किए जाएंगे पेंसिल्वेनिया के अंदर जो कि जाहिर है कि बड़ा बैटल ग्राउंड स्टेट जो है वो समझा जा रहा है, और मोस्टली ट्रंप और हैरिस कैंपेन जो है वो यही समझती है कि जो कोई भी इस स्टेट में जीतेगा पेंसिल्वेनिया में वही असल में जो है वो जीतेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अमेरिकन लॉ के अगेंस्ट है। अलबत्ता ये लोग जो साइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि वी आर सपोर्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जिस वक्त पेंसिल्वेनिया के अंदर भी जिस वक्त ये टाउन हॉल हो रहा था ट्रंप साहब के लिए तो वहां पे अचानक से एक जो अटेंडी थी लेडी उसको जी अनाउंस किया एलोन मस्क साहब ने कि उसको 1 मिलियन डॉलर जो है वो दिए जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਪਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਨਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਜਪਾਨ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਇਟਲੀ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬ ਇਹ ਅਗਰੀ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਅਬ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ, यानी कि दुनिया में और तबाही लाई जा सके है जी। अच्छा जी, अब ये जो है ये कहते हैं जी ट्रायल लेटरल गवर्नमेंट जो है इसके बीच में ये हम जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये सारी प्रोडक्शन जो है एयरक्राफ्ट्स की चालू हो जाएगी। इनका अग्रीमेंट वैसे 2022 में हुआ था लेकिन उसके बाद आगे बात बढ़ी नहीं थी, और वो कहते हैं जी कि अब उसको हम तैयार करेंगे जल्दी से इन एयरक्राफ्ट्स को ताकि इनको 2035 तक डिप्लॉय किया जा सके अंडर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन against the growing threats of China, Russia and North Korea. इसके अलावा जो जापान है वो अपने F-2s जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस भी करना चाहता है, और वो जॉइंटली इनके साथ डेवलप करेगा US यूरो फाइटर टाइफून्स, और ये प्रोड्यूस किए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद यूके, इटली, स्पेन, जर्मनी। जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनरल नाकातान, उनकी आज मुलाकातें जो हैं यूके और इटालियन काउंटर पार्ट्स जो हैं जॉन हीली और गोएडो क्रॉसेटो के साथ हुई हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G7, और इसके अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, यूके की BAE सिस्टम्स PLC और इटली की लियोनार्डो जो हैं वो ये जो गीको है इसका प्लांट बेस्ड होएगा यूके के अंदर और इसको हेड करेंगे एक जापानीज। तो ये कहते हैं जी कि हम ये अब बनाना चाहते हैं। आज जो बहुत बड़ी यूरोप के अंदर खबर रही वो थी मर्सिडीज बेंज से रिलेटेड। मर्सिडीज बेंज ने इनॉग्यूरेट किया है यूरोप का सबसे बड़ा बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट इन सदर्न जर्मन टाउन ऑफ कोपेनहेम वहां पे। और उन्होंने कहा जी कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है इसमें मिलियंस ऑफ यूरोस जो है मर्सिडीज ने स्पेंड किए हैं और ये रिक्लेम करेंगे 96% ऑफ यूज्ड बैटरीज और ट्रांसफॉर्म करेंगे 2,500 टन ऑफ रिट्रीव्ड मटेरियल इन ओवर 50,000 बैटरी मॉड्यूल्स जिनको के टेलर किया गया है फॉर न्यू ऑल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज मॉडल्स। इसके ऊपर बात करते हुए आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि ये बहुत ही हाई एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल प्रोटेक्शनिस्ट जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। हमें पता है कि हमारी अपनी गाड़ियों को